दिन भर तारीख 3 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख दुलत ने दावा किया, वाजपेयी ने गुजरात दंगों के संदर्भ में कहा था हमसे गलती हुई, कांग्रेस ने घेरा।
क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम अब देशवासियों से 2002 के शर्मनाक दंगे और नरसंहार के लिए माफी मांगेंगे?
भारत सरकार ने जारी किए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े, विवेचना में सुनिए कि कैसे 1976 में इसराइल के कमांडोज ने उगांडा के हवाई अड्डे पर हमला कर 102 लोगों को छुड़ाया।
मैं कहूंगा कि ये इतना बेहतरीन और इतना बुलंद करेजस ऑपरेशन था कि इतिहास में इसके मुकाबले में मैंने आज तक कहीं नहीं सुना।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। सीरिया के युद्ध विमानों ने देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो से विद्रोहियों को हटाने के लिए जबरदस्त बमबारी की है। 13 इस्लामिक गुटों ने मिलकर अलेप्पो पर कब्जा करने के लिए सुनियोजित धावा बोला और दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई। सीरियाई अधिकारियों के मुताबिक हमले में विद्रोही गुट के कम से कम 100 लड़ाकू मारे गए हैं। विद्रोहियों ने शहर की कई इमारतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे शहर पर कब्जा नहीं कर पाए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत ने कहा है कि गुजरात दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत बताया था। इंडिया टुडे टीवी को दिए साक्षात्कार में दुलत ने दावा किया कि वाजपेयी ने दंगों के संदर्भ में कहा था कि हमसे गलती हुई है। दुलत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता डॉ अजय कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब गुजरात दंगों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने हाल में हुए बोको हराम के हमलों की कड़ी निंदा की है। एक वक्तव्य में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने इस हफ्ते नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में 150 लोगों की हत्या को बोको हराम का अमानवीय, बर्बर और जघन्य कृत्य बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोको हराम के खिलाफ एकजुट और मजबूत होकर लड़ने की अपील की है। चीन के शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सरकार पिछले कुछ दिनों से शेयर कीमतों को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। शंघाई शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक आज 6% गिरावट पर बंद हुआ। चीन की सरकार ने घोषणा की है कि वह स्टॉक मार्केट में हुई किसी भी संदिग्ध चालबाजी की जाँच करेगी। अब सरकार की चिंता यह है कि देश के 9 करोड़ निजी निवेशक शेयर बाजार की इस गिरावट पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। शंघाई के कुछ लोगों ने अपनी चिंता ऐसे बयान की। मेरी दो चिंताएं हैं। मैं अपने देश की वृहद आर्थिक नीति को लेकर परेशान हूं। हम सरकारी उद्यमों में सुधारों को कैसे जारी रख सकते हैं? दूसरे, मैं निजी उद्यमियों और आम लोगों को लेकर परेशान हूं। शेयर बाजार में ये गिरावट हमारी जिंदगी पर बहुत असर डालेगी। ये थे शंघाई के एक आम आदमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार के सत्तारूढ़ दल में चुनाव से 4 महीने पहले तनाव के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति डायन साइन ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। इस पद के दूसरे दावेदार श्वे मन हैं, जो सेना समर्थित यूएसडीपी के सदस्य हैं और म्यांमार की लोकसभा के अध्यक्ष हैं। बीबीसी को प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति डायन साइन के करीब 2 करीबी सहयोगियों को चुनावी दौड़ से बाहर रखा गया है। पार्टी के इस फैसले में श्वे मन की स्वीकृति साफ झलकती है। फलस्तीन प्रशासन के सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के इजरायली क्षेत्र में हमास चरमपंथी नेटवर्क के 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कई सालों बाद इस तरह की ये सबसे बड़ी तादाद में हुई गिरफ्तारियां हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम में हिंदुस्तान की खबर पर बाद में आएंगे, पहले जिक्र करेंगे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का। जैसा कि अभी भी आपने समाचारों में सुना, सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ कई बड़े हवाई हमले किए हैं। अलेप्पो शहर पर कब्जा करने के लिए विद्रोहियों ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसके जवाब में सीरिया की सेना ने हमले किए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स संगठन का कहना है कि गुरुवार को विद्रोहियों ने सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में सैकड़ों रॉकेट और गोले दागे थे। संगठन के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक विद्रोहियों को कुछ सफलता मिली थी, लेकिन सीरियाई सरकार की समाचार एजेंसी सना के मुताबिक इस हमले को विफल कर दिया गया है और लगभग 100 चरमपंथी मारे गए हैं। अलेप्पो कभी सीरिया का औद्योगिक गढ़ था, अब पश्चिम के इलाकों पर सरकार का नियंत्रण है और पूर्व में विद्रोहियों का। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि अगर विद्रोही पूरे एलेप्पो पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं तो ये सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। अब रुक करते हैं भारत का और भारत में बड़ी खबर का। भारत के राजनीतिक हलकों में आज एक बार फिर से कांधार विमान अपहरण और गुजरात दंगों का दर्द सुर्खियां बटोरता रहा। दरअसल कल भारत की खुफिया एजेंसी पूर्व रॉ के प्रमुख एस दुलत की एक किताब आई है जिसका नाम है कश्मीर द वाजपेयी ईयर। दुलत ने इंडिया टुडे टीवी को साक्षात्कार दिया और उसमें कहा कि वाजपेयी ने गुजरात दंगों के संदर्भ में कहा था कि हमसे गलती हुई है। इस बयान के बाद दोनों मुद्दे थे एक बार फिर से गर्म हो गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बयानबाजी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की है। इस प्रकरण पर किस तरह से सियासत हुई, सुनिए इकबाल अहमद से।
भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत के दावों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर गुजरात दंगों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपना लिया है। इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में दुलत ने दावा किया था कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गए तो वाजपेयी ने 2002 गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए उसे भारतीय जनता पार्टी की गलती मानी थी। सुनते हैं दुलत के शब्दों में कि उन्होंने क्या कहा।
ये जो किस्सा था, जब मैं पीएमओ छोड़ रहा था 2004 में, तो मैं अटल जी के पास गया था फेयरवेल कॉल करने, तो वो बड़े रिलैक्स्ड मूड में थे। तो मैंने कहा, सर ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, इनको खुद नहीं मालूम क्या हो गया, मतलब कांग्रेस को नहीं मालूम कि ये कैसे जीत गए। तो उस दौरान बातों में फिर उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि शायद गुजरात में हमारे से गलती हुई। सो ऑब्वियसली वो चीज़ उनके जहन में थी।
दुलत के दावों के फौरन बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर डाली। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार,
क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम अब देशवासियों से 2002 के शर्मनाक दंगे और नरसंहार के लिए माफी मांगेंगे? ये सब बातें के खुलासा के बाद कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने चुप्पी तोड़े और देश से माफी मांगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस अपील को ठुकराते हुए कहा कि माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता एमजे अकबर का कहना था,
हर इन्वेस्टिगेशन, नानावती इन्वेस्टिगेशन हो, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन हो, हर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर दिया है कि इसमें गुजरात सरकार की और खासतौर हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका कोई हाथ नहीं था। उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और आज जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका तिनका भर हाथ नहीं था। और ये प्रूफ के बाद तो वक्त आ गया है कि इस इशू पे कांग्रेस असल में माफी मांगे।
ये थे एमजे अकबर के शब्द। वैसे दुलत ने इंडिया टुडे टीवी को दिए इसी इंटरव्यू में ये भी दावा किया था कि साल 1999 में हुए कंधार अपहरण कांड से निपटने में भी चूक हुई थी।
Well, let me say we goofed. What was uppermost in everybody's mind? Nobody wanted to take a call. What was uppermost in everybody's
mind? मैं कहूंगा कि हमसे बेवकूफी हुई। हुआ क्या कि उस वक्त हर कोई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परेशान था। इस चक्कर में पंजाब पुलिस को किसी ने साफ साफ निर्देश दिया ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि विमान को अमृतसर से हरगिज नहीं जाने देना चाहिए।
इस पर भी कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए।
अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वाजपेयी साहब की सरकार ने उस सारे मामले को जिस तरह से हैंडल किया था उसके कारण ये जहाज कंधार जा सका। पर एक बुनियादी सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, क्या उस समय की भारत की सरकार ने IC-814 के जो यात्री थे उनको रिहा करवाने के लिए तालिबान को फिरौती दी थी कि नहीं दी थी?
भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उस दौरान जो भी ठीक था और यात्रियों को महफूज वापस लाने के लिए जो भी जरूरी कदम थे वो उठाए गए थे। बीबीसी रिपोर्ट।
इकबाल अहमद से आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे। बाद में दौलत ने मीडिया से बात करते हुए कांधार अपहरण कांड के बारे में ये कहा, तत्कालीन परिस्थितियों में जो उचित कदम थे वो उठाए जा सकते थे और वो उठाए गए। अब एक रिपोर्ट का जिक्र। 1932 के बाद पहली बार भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। 8 दशक बाद इस तरह की जाति आधारित जनगणना जारी की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस रिपोर्ट के आंकड़े गरीबी के मूल कारणों को समझने में मदद करेंगे।
डॉक्यूमेंट विल फॉर्म अ बेसिस ऑफ हेल्पिंग अस टू टारगेट।
अरुण जेटली कह रहे थे कि इस तरह की रिपोर्ट से भारत की वास्तविकता झलकती है। ये केंद्र और राज्य सरकारों की नीति बनाने वालों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और मुझे विश्वास है कि योजनाओं की विशालता और पहुंच को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट से सभी सरकारों को लक्षित समूहों के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। ये थे अरुण जेटली के शब्द। मैंने बात की समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे से और पूछा कि ये जो सर्वेक्षण है, जाति आधारित सर्वेक्षण है, 8 दशक बाद हुआ है, कैसे देखते हैं और नतीजा क्या?
मोटे तौर पर को मुझ जैसे बहुत लोगों को ये जो आशंका थी वो सच निकली है कि ये लगभग निरर्थक होगा। इसे कास्ट सेंसस कहा जा रहा है, जबकि जाति पर हमारे पास जो पहले से ही जानकारी मौजूद है उसमें बहुत ही कम, नहीं के बराबर इजाफा हो रहा है इस सेंसस से।
1932 के बाद 8 दशक के बाद इस तरह की जाति पर आधारित गणना हुई है।
हाँ, यही तो भ्रमित करने वाली इस तरह के वक्तव्य हैं, क्योंकि जिन कैटेगरीज को गिनाया गया है इस गणना जो हुई है वो है एससी एसटी और अदर। एससी एसटी तो हमारे सेंसस में शुरू से उनकी गणना हो रही है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गणना शुरू से हो रही है, तो इसमें नई कोई बात नहीं है, कम से कम अभी तक जो उन्होंने किया है। सवाल पूछा गया है जाति को लेकर, लेकिन इस पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई है और न ही सरकार ने अपनी तरफ से कोई अंदेशा दिया है कि इस पर जानकारी बाद में प्रकाशित होगी भी।
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जाति हम नहीं बताएंगे।
तो अगर नहीं बताएंगे तो ये तो नेशनल सैंपल सर्वे से जो हमें जानकारी मिलती है ये उससे भी बदतर है, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे में कम से कम ओबीसी की अलग से जानकारी मिलती है, यहाँ सिर्फ एससी एसटी और अदर। अदर में कौन आते हैं? सारे ओबीसी आते हैं, सारे अपर कास्ट आते हैं, हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, बाकी सभी धर्म और समुदाय आ जाते हैं उसमें। तो अदर कैटेगरी जो है ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली कैटेगरी है, इसी से बचने के लिए कास्ट सेंसस की मांग की गई थी।
लेकिन जब 2011 की अगर आप बात याद करें, लगभग हर राजनीतिक दल इस जाति आधारित गणना का विरोध कर रहा था।
पहले विरोध हुआ, लेकिन बाद में कुछ बहुत सारी जो जैसे समाजवादी आरजेडी और बहुत सारी पार्टियों ने इसका फिर समर्थन भी किया था। इसी वजह से इस एसईसीसी की घोषणा हुई ना, क्योंकि इतना दबाव बना। इस प्रक्रिया से हम लोग जुड़े हुए थे, कुछ बहुत सारे लोग, जो हम 2001 से हम प्रयास कर रहे हैं कि जाति की गणना हो, लेकिन ये हर बार ऐन मौके पर इसे खारिज कर दिया जाता है।
ये थे समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया और साथ में सेल्फी विद डॉटर हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ तस्वीर पोस्ट करने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील पर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुहिम पर सवाल भी उठाए और कहा कि असल जरूरत महिलाओं को लेकर सोच बदलने की है। इस बार बीबीसी इंडिया बोल में बहस का यही विषय है, क्या सिर्फ सेल्फी से बदलाव आता है या महिलाओं के लिए सोच बदलने की जरूरत है। शनिवार 4 जुलाई शाम 7:30 बजे आप शामिल हो कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें मुफ्त फोन करें 1800-11-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अंतर्राष्ट्रीय खबर। ग्रीस में इसके बेलआउट पैकेज को लेकर होने वाले जनमत संग्रह की वैधता को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई जारी है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा प्रभात पांडे से।
यूरोपीय कमीशन ने ग्रीस के लिए जो बेलआउट पैकेज तैयार किया है उस पर वहां के नागरिकों की राय जानने के लिए रविवार को जनमत संग्रह होने जा रहा है, लेकिन ग्रीस के 2 नागरिकों ने इस रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा है कि जनमत संग्रह की समीक्षा की जाए। इसके खिलाफ अपील करने वाले स्पिरोडन निकलो ने कहा कि जनमत सर्वे में पूछे जाने वाले सवाल साफ नहीं हैं और बेहद जटिल हैं, और ये बात ग्रीस के नागरिकों के हित में नहीं है।
Όχι μόνο ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στους συνταγματικούς όρους, αλλά τυπικά δεν είναι έγκυρο.
ये ना सिर्फ संवैधानिक नियमों के खिलाफ है बल्कि ये सवाल वैध ही नहीं है। सवालों में वो शब्दावली शामिल ही नहीं है जिसके आधार पर देश के लोगों से वोट करने के लिए कहा गया है।
दूसरी ओर ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस ने कहा है कि जनमत संग्रह ग्रीस के नागरिकों के हित में है और उन्हें ये फैसला लेने में मदद करेगा कि वो ग्रीस पर जबरदस्ती थोपे गए समझौते को चुने या देश की बेहतरी के लिए उचित समझौते को चुने। वहीं यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट जां क्लॉड यूंकर ने ग्रीस के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बेलआउट पैकेज को नकारने के गंभीर परिणाम होंगे। यूंकर ने कहा,
बेलआउट की प्रक्रिया अब लगभग खत्म होने को है, इस पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। अगर ग्रीस के लोगों ने जनमत सर्वे में बेलआउट पैकेज को नकारा तो इससे ग्रीस का ही नुकसान होगा, इससे वो अपने ही देश की स्थिति कमजोर करेंगे।
रविवार को होने वाले इस जनमत संग्रह के लिए प्रचार अभियान आज खत्म हो रहा है। राजधानी एथेंस में बेलआउट पैकेज के समर्थक और विरोधी दोनों ही लगातार रैलियां कर रहे हैं।
और अब बात करेंगे विवेचना की। 1976 में इसराइल के कमांडोज ने आज ही के दिन 4000 किलोमीटर दूर उगांडा के हवाई अड्डे पर हमला बोलकर विमान अपहरण में बंधक बनाए गए 102 लोगों को छुड़ाया था। इसको इतिहास का सबसे दुस्साहसी बचाव अभियान माना जाता है। क्या था पूरा मामला, रेहान फजल से सुनते हैं।
दिस इज द CBS Sunday Night News with Morton Dean.
Good evening. An Air France jet was hijacked by Palestinian guerrillas today. On board, 9 Americans, some 80 Israelis and 100
Tel Aviv से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने एथेंस में रुकने के बाद फिर से उड़ना शुरू किया था कि चार यात्री एकदम से उठे। उनके हाथों में पिस्टल और ग्रेनेड थे। उन्होंने विमान पर नियंत्रण करने के बाद पायलट को लीबिया के शहर बेनगाजी चलने का आदेश दिया। उस विमान पर सवार थीं सारा डेविडसन।
The first thing that I really recall is the blue eyes of my two sons.
पहली चीज जो मुझे याद आती है वो है मेरे दोनों बेटों की नीली आंखें। वो मेरी तरफ देख रहे थे, मानो पूछ रहे हूँ कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होना था।
बेनगाजी में 7 घंटे रुकने और ईंधन लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को आदेश दिया कि वो विमान को उगांडा की राजधानी कंपाला के हवाई अड्डे एंटेबे ले चले। उस समय उगांडा पर तानाशाह इदी अमीन का शासन था। उनकी पूरी सहानुभूति अपहरणकर्ताओं के साथ थी। हालांकि पहले वो इसराइल के दोस्त हुआ करते थे।
He was Field Marshal Idi Amin Dada, His Majesty. He was so huge.
वो फील्ड मार्शल, दादा, ईदी अमीन, हिज मजेस्टी, सब कुछ थे। उनकी बहुत बड़ी कदकाठी थी, बड़ा चेहरा, बड़ा सिर, बड़े हाथ। उनकी हर चीज बहुत बड़ी थी। वो हर समय यूनिफॉर्म पहने रहते थे, जिससे वो और भी डरावने लगते थे।
अपहरणकर्ताओं ने मांग की कि बंधकों की रिहाई के बदले दुनिया के अलग अलग देशों की जेल में रह रहे 54 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, अन्यथा वो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। अपहरणकर्ताओं में ज्यादातर फलस्तीनी थे, लेकिन उनमें से 2 पश्चिम जर्मन संगठन बादेर मानहाफ के सदस्य थे। सारा डेविडसन और उनके बेटी बेनी याद करते हैं कि किस तरह बंधकों को 2 समूह में बांटा गया।
उन्होंने कहा कि हम नाम पुकारेंगे और जिन लोगों के नाम पुकारे जाएं वो दूसरे कमरे में चले जाएं।
And after the second or third name, it was evident that...
और दूसरे और तीसरे नाम के बाद ये साफ लगने लगा कि वो यहूदियों और इसराइलियों के नाम पुकार रहे हैं।
It's like a nightmare, calling Israeli Jewish names.
मेरे लिए ये बहुत ही भयावह अनुभव था, यहूदियों का नाम पुकारा जाना और ये हुक्म कि दूसरे कमरे में चले जाएं, वो भी एक जर्मन द्वारा। मेरे पास उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है।
दूसरे गैर यहूदी बंधकों को रिहा कर दिया गया। बंधकों में से एक मखूम दहान के बारे में अपहरणकर्ताओं को शक था कि उनका संबंध इसराइल की सेना से था।
उन्होंने मेरा नाम पुकारा, मैंने कहा जी ये मेरा नाम है। उन्होंने कहा उठो इधर आओ। वो लहीम शहीम आदमी था। वो मेरे पास आया और उसने अपनी पिस्टल मेरी कनपटी पर लगा दी। मैं पिस्टल की ठंडी धातु को महसूस कर पा रहा था। उसने मुझे आलू के बोरे की तरह उठाया और जमीन पर पटक दिया। फिर वो मुझे मारने लगा। वो मेरे ऊपर बैठ गया। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा।
फलस्तीनी बंदूकधारियों ने ये कदम उनके लोगों और इसराइलियों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष के बाद उठाया था। 1948 में हुई लड़ाई में फलस्तीनियों की हार हुई थी। उसके बाद बहुत से लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दुनिया भर के यहूदी उस जमीन पर आ बसे थे जो पहले उनकी मातृभूमि हुआ करती थी। एंतेबे के अपहरणकर्ताओं में से एक फिलिस्तीनी थे फायस जाबा। बाद में उनके चचेरे भाई अब्दुल रहीम जाबा ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने हिंसा का रास्ता क्यों चुना था।
फैज और मैं यरूशलम में रहा करते थे जब हम बच्चे थे। हमने हत्याएं होते देखी, हमारे ऊपर बम गिराए गए, हमारे ऊपर इसका असर पड़ा। जब हम स्कूल जाने लगे और थोड़ा बड़े हुए तो हम सोचने लगे कि हम इसका बदला लेंगे।
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, इसराइल में सरकार पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा था।
Time was running out and the fear, anxiety and frustration of the relatives of the Israeli hostages held at Entebbe spilled out into an angry outpouring of emotion. They directed their rage at a personal representative of Prime Minister Yitzhak Rabin. Give the hijackers what they want, they screamed. Just let our loved ones come back alive.
शुरू में इसराइल की सरकार ने संकेत दिया कि वो अपहरणकर्ताओं से बात करना चाहती है, लेकिन तभी इदी अमीन अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक में भाग लेने मॉरिशस चले गए, जिससे इसराइल को कमांडो कार्रवाई करने के लिए और समय मिल गया। जनरल अशोक मेहता उस समय भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे और अमेरिका में पोर्ट लेवनबर्थ के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे थे।
इसमें मुश्किलें सबसे बड़ी ये थी कि आपने 2500 मील जाना है और 2500 मील लौट के आना है, और उसके लिए जो हवाई जहाज उस समय C-130s और बोइंग 707, दो बोइंग 707 इस्तेमाल हुए, 4 C-30 हवाई जहाज इस्तेमाल हुए। टेलवीव से ये निकले सैटरडे 3 जुलाई, 6 दिन के बाद। कोशिश उनकी ये थी कि रात के 12 बजे के करीब, जब इनके गार्ड शायद सो रहे हों, वो उस समय वहाँ पहुँचे। तो रूट उन्होंने लिया टेलवीव से स्ट्रेट थ्रू रेड सी जिबूती आए, और फ्रॉम जिबूती उन्होंने दे कट अक्रॉस और एंटेबे पहुँचे, और ये करीब 7 घंटे इसमें लगे। ओवरऑल इनके थे एक ब्रिगेडियर डैन शॉर्मन, और ये लोग पहले 4 C-130s, 2 बोइंग्स में उनका कमांड हेडक्वार्टर था, और वो एंटेबे एयरपोर्ट के को सर्कल कर रहे थे उसमें कमांड एंड कम्युनिकेशन के साथ। 4 C-130s को लैंड करना था, और इन्होंने रात के अंधेरे में प्रैक्टिस किया हुआ था लैंड करने के लिए, लेकिन जब ये हवाई जहाज़ पहुँचे तो वहाँ पर वो रनवे पे लाइट जल रही थी, और इन लोगों ने 4 के 4 C-130 इतने बड़े हवाई जहाज दे ऑल लैंडेड, और किसी को पता नहीं चला।
मुख्य विमान में सवार कमांडो दल के एक सदस्य थे अमीर आफर।
The moment that the wheels hit the ground, I immediately loaded the gun. My weapon, it was an AK-47, a Kalashnikov.
जैसे ही हमने जमीन को छुआ, हमने अपने हथियार AK-47 को लोड किया। मेरे एक साथी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें विमान के अंदर गन लोड नहीं करनी चाहिए। मैंने उससे कहा, शट अप, ये लड़ाई है, अब यहाँ कोई नियम लागू नहीं होते।
लैंड करने से 8 मिनट पहले ही हरकुलिस 103 के रैंप खोल दिए गए। जहाज से काली मर्सिडीज कार उतारी गई। ये कार उस कार से बहुत मिलती जुलती थी जिसे राष्ट्रपति इदी अमीन इस्तेमाल किया करते थे। उसके पीछे कमांडोज से भरी हुई 2 लैंड रोवर गाड़ियां भी उतारी गईं। लेकिन टर्मिनल के बाहर खड़े एक उगांडन सैनिक को अंदेशा हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने अपनी राइफल उठाई और अचानक गोलियां चलने लगी।
I jumped from the back of the last Land Rover and I looked to the left, I looked to the right, there was darkness and I didn't see my commander. Someone was in the terminal shooting outside and this shot broke the glass and he was shooting at me. And you know the bullets, one was here, one was there. But I was so focused that I didn't hear the shot at all. I just saw him shooting. I shot something like 3 or 4 shots and all of them hit him, one after one. Tuck, tuck, tuck.
मैं लैंड रोवर के पिछले हिस्से से कूदा। मैंने दाएं देखा फिर बाएं देखा, दोनों तरफ अंधेरा था। मुझे मेरे कमांडर नहीं दिखाई दिए। कोई टर्मिनल के अंदर से बाहर गोली चला रहा था जिससे उसके शीशे टूट गए थे। वो मुझ पर निशाना लगा रहे थे। मेरे दोनों ओर से गोलियां निकल रही थी लेकिन मैं इतना फोकस्ड था कि मुझे गोलियों की आवाज तक नहीं सुनाई पड़ रही थी। मुझे गोली चलाता एक उगांडाई सैनिक दिखाई दिया। मैंने निशाना लगाकर उस पर चार गोलियां दागी और एक के बाद एक चारों गोलियां उसे लगी। टक टक टक।
I was frightened as hell. Simply laid on the ground.
मैं गोलियों की आवाज सुनकर डर गया। मैं जमीन की तरफ मुंह करके लेट गया। मेरी माँ मेरे ऊपर थी।
And I heard Benny praying underneath me with all this.
और मैंने सुना कि मेरे चारों तरफ गोलियों की आवाज के बीच मेरे नीचे दबा बेनी प्रार्थना कर रहा है। माई शाइल
माईशाइल, जिसका अर्थ है सुनो इज़राइल, ईश्वर हमारा बादशाह है। और फिर उसके आगे मुझे प्रार्थना याद नहीं आई।
And then was a minute of quiet. They stopped the shooting somehow, and somebody said in Hebrew, "Listen, there are Israeli guys here."
इसके बाद एक मिनट की शांति रही, गोलीबारी रुकी और किसी ने हिब्रू में कहा, हम इजरायली सैनिक हैं। तभी मैंने देखा कि एक इजरायली सैनिक हमारी तरफ देखकर कह रहा है, हम आपको वापस घर ले जाने आए हैं। ये एक ऐसा क्षण था जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। ये अविश्वसनीय था।
सभी अपहरणकर्ता और करीब 20 उगांडाई सैनिक मारे गए। एक इसराइली कर्नल योनाथन नेतन्याहू को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये वर्तमान इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। इस अभियान में 3 बंधक भी मारे गए। एक और बुजुर्ग बंधक डोरा ब्लॉक उस समय टर्मिनल में मौजूद नहीं थी क्योंकि उन्हें एक दिन पहले अस्पताल ले जाया गया था। माना जाता है कि इस मिशन के बाद उन्हें अमीन के आदेश पर बिस्तर से खींच कर बाहर लाया गया और मार डाला गया। जब बंधकों और कमांडोज से भरे विमानों ने 4 जुलाई 1976 की सुबह बेन गुरियो हवाई अड्डे पर लैंड किया तो वहां प्रधानमंत्री रबीन के साथ हजारों लोगों का हजूम उनके स्वागत में मौजूद था।
ये एयरक्राफ्ट एंटेबे से निकलते हैं वाया द सी और उसी रेड सी के रास्ते होते हुए टेल अवीव पहुंच जाते हैं और टेल अवीव संडे 4 जुलाई, और वहाँ पर सुनते हैं कि उस दिन पहली मर्तबा मेनाकिन बेगिन जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे वो कभी शराब नहीं पीते थे, उनको यत्साक रबीन ने बुलवाया कि खुशखबरी देने के लिए। तो वो कहते मैं तो चाय पीऊँगा, तो उन्होंने कहा ये कलर्ड टी है, तो उसको सिंगल मॉल्ट पिलवाई और उसने कहा कि इस खुशखबरी के दिन में मैं सिंगल मॉल्ट विस्की पीऊँगा, और उन्होंने विस्की पी। और गोल्डा मेयर को भी रात को उठाया, प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर को, उनको भी बुलवाया क्योंकि ये इसराइल के लिए उनके इतिहास में आई मीन दिस इज़ अ रेड लेटर डे। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक ना हुआ है ना हो सकता है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
इतिहास का सबसे दुस्साहसिक बचाव अभियान, उसकी कहानी सुना रहे थे रेहान फजल। और अब कार्यक्रम में से पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
BBC समाचार। सीरिया के युद्ध विमानों ने देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो से विद्रोहियों को हटाने के लिए जबरदस्त बमबारी की है। सीरियाई अधिकारियों के मुताबिक हमले में विद्रोही गुट के कम से कम 100 लड़ाकू मारे गए हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत ने कहा है कि गुजरात दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत बताया था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने हाल में हुए बोको हराम के हमलों की कड़ी निंदा की है। एक वक्तव्य में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने इस हफ्ते नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में 150 लोगों की हत्या को बोको हराम का अमानवीय कृत्य बताया। चीन के शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। हालांकि सरकार पिछले कुछ दिनों से शेयर कीमतों को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। म्यांमार के सत्तारूढ़ दल में चुनाव से 4 महीने पहले तनाव के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति दैन सैन दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। इस पद के दूसरे दावेदार श्वे मन हैं। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। और अब आपसे अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में मुलाकात होगी। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। आज स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। नमस्कार।